बाबा की इस बेहद बगिया में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम सबके बीच हमारी आदरणीय लीना बहन जी उपस्थित हैं। आप 40 वर्षों से ज्ञान में हैं और 26 वर्षों से आप समर्पित हैं। वर्तमान समय उड़ीसा के एक बेहद क्षेत्र भुवनेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं। आपने अपने जीवन के 12 वर्ष बाबा की बेहद सेवा, हमारे रमेश भाई के साथ आपने अकाउंट डिपार्टमेंट में भी दिया। आप चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर, ज्ञान योग की दिव्य मूर्ति बनकर बहुत सारी आत्माओं का आपने कल्याण किया और अभी हम सब आदरणीय लीना बहन जी से उनकी क्लास सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सभी भाई बहने बहुत प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठा बाबा, मीठा ड्रामा और बड़ा मीठा ये परिवार है। बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर सा जीवन दिया है जो दुनिया से बिल्कुल अलग है। अलग है कि नहीं? दुनिया में आज के तारीख में जीवन में कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितनी बातें हैं, बाप रे बाप, बात मत पूछो। इतनी बातें हैं बेहद। वो लोग जो बहुत सुखी और बहुत खुश दिखाई देते हैं वो लोग भी दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार जैसे दुखी हो ऐसा लग रहा है, लेकिन बाबा के बच्चे क्या कहेंगे, दुखी हैं कि सुखी हैं? सुखी हैं। जो कहते हैं हम पूरे सुखी हैं, बिल्कुल सुखी हैं, वो जरा हाथ उठाइए भाई, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, आप सुखी हैं इसलिए। लेकिन ऐसा तो इम्पॉसिबल है। जिंदगी जो है कलयुग के अंत में दुख सुख का खेल है। यहाँ दुख तो ज्यादा है, सुख कम है। हाँ, वो किसने गीत गाया ना, इसमें खुशियां हैं चार बेसुमार, क्या गम है बेसुमार, ऐसा कुछ गीत है। चार खुशियां हैं तो गम बहुत सारे हैं। तो बाबा के बच्चों को भी तो गम दुख कुछ आता होगा कि नहीं आता होगा? आता है कि नहीं आता है? आता है ना। जो कहते नहीं नहीं मुझे तो कोई गम कोई दुख नहीं आता है, वो जरा लंबा हाथ उठाइए। अच्छा भाई, कुछ भाई बहने उसके लिए भी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। हाँ देखो कितना हाथ उठाया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, उनके लिए ताली बजा दीजिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम सबके आसपास दुख घूम रहा है, परिस्थितियां घूम रही हैं, लेकिन नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार। पंजाब से कुछ भाई बहने आए होंगे, उन्होंने ये पढ़ा सुना होगा। नानक देव कहते हैं दुनिया में सब आत्माएं दुखी हैं, सब मनुष्य आत्माएं दुखी हैं, लेकिन वो सुखी है कौन? कौन सुखी है? जिसको नाम आधार, जिसका परमात्मा के साथ प्रीत है, जिसने परमात्मा को अपना जीवन का सहारा बनाया, वो सुखी है। कबीर जी ने भी एक दोहा लिखा है। क्या लिखा है? कह रहे हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। चक्की देखिए ना, उसमें दाना डालते हैं, वो घूमती है चक्की। चक्की के घूमने से क्या होता है कि सारे दाने जो चक्की के अंदर जाते हैं वो फटके दो टुकड़े हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? हो जाते हैं। लेकिन कुछ दाने साबुत के साबुत रहते हैं, बताओ कैसे? आप पे से किन लोगों ने चक्की चलता हुआ देखा है, हाथ उठाइए। चक्की जिन्होंने देखी है, भाई वाह बहुत अच्छा। देखिए ना, चलने का सिस्टम देखा है कि नहीं देखा है? जब चक्की चलती है तो सारे दाने फटते हैं, लेकिन कुछ दाने साबुत रहते हैं। कौन से दाने साबुत रहते हैं बताइए? देखो सब जानते हैं, उसका एक नेवल पॉइंट होता है, खिल्ली होती है, बीच की खिल्ली, ठीक है कि नहीं? तो उस खिल्ली के आसपास जो दाने होते हैं वो टूटते नहीं हैं। संसार अगर चक्की है तो फिर खिल्ली कौन हुए? परमात्मा शिव बाबा। दुनिया भी मानती है कि जिन लोगों ने चलती हुई चक्की में भी भगवान के पास रहना मंजूर किया है, जो उसको पकड़ के चिटक के रहते हैं, जो दूर नहीं जाते हैं, वो कभी फटते नहीं है। दो पाटों के बीच में भी वो पिसते नहीं है, ठीक है ना। तो बाबा के वो बच्चे भले हैं चक्की में ही, लेकिन जो नेवल पॉइंट पे हैं, जो बाबा के आसपास हैं, जो बाबा को याद करते हैं, जिन्होंने जीवन का सहारा भगवान को बनाया है, वो कभी फटते नहीं हैं। अच्छा, उनके पास परिस्थितियां आती हैं कि नहीं आती हैं? आती हैं। वो जो चक्की चलाने वाले होते हैं ना, बड़े होशियार होते हैं। फिर क्या करते हैं, पाटे को उठाते हैं, फिर उसको इधर उधर बिखेर देते हैं। हाँ, बहुत कोशिश करते हैं कि वो बिखर जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दाने फिर भी उसको चिटके रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? वही सब कुछ हमारे साथ होता है। परिस्थितियां हमें बाबा से दूर करने की कोशिश करती है, खुशी के बजाय गम लाने की कोशिश करती है। लेकिन जो फिर भी बाबा को पकड़े रखते हैं, वो बच्चे जीवन में समर्थ होते हैं, वो टूटते नहीं हैं, वो बिखर नहीं जाते हैं, वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने का एक और अप्रोच है। क्या अप्रोच है, आज उसके बारे में सोचते हैं। हाँ जी, साक्षी होकर के देखना, बिल्कुल ठीक। एक सुंदर और अप्रोच है, मैं उसके बारे में थोड़ी भूमिका बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हम लोगों ने ये जो यूथ विंग के कई कॉन्फ्रेंसेस में एक एम्बलम बनाया हुआ होता है, आपने उस एम्बलम को भी देखा होगा। क्या है वो एम्बलम? हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस था यूथ विंग का, और हमने उसको मेन गेट पे ही लगा के रखा था, और वो यूथ के लिए बहुत इंस्पिरेशन वाला एम्बलम रहा। वो एम्बलम क्या है? वो एक बड़ा स्टोन था। क्या था? एक बड़ा पत्थर था। उस पत्थर में क्या दिखाया? एक मूर्ति है, पत्थर से मूर्ति बन रही है। वो मूर्ति क्या है? वो मूर्ति खुद एक मूर्तिकार है। उसके हाथ में चिजल्स हैं, छेनी और हथौड़ा है, और वो अपने आप को ही बना रहा है। समझ में आया क्या एम्बलम था? एक पत्थर है, पत्थर में क्या खुदाई किया हुआ है कि एक मूर्ति बन रही है, और उस मूर्ति को बना कौन रहा है? खुद मूर्ति अपने आप को बना रही है, छेनी हथौड़ा पकड़ करके, ठीक है। उसमें मैसेज क्या था? यू आर द स्टोन, आप पत्थर हैं, एंड यू आर द चिजल्स, आप ही छेनी और हथौड़े हैं, एंड यू आर द स्कल्प्टर, आप ही खुद मूर्तिकार हैं। तो अपने जीवन का निर्माण कौन करेगा? आप खुद अपने जीवन के निर्माता हैं, ठीक है। क्या उसमें मैसेज था? कि आप खुद यूथ को मैसेज दे रहे थे ना, कई बार यूथ इसको ब्लेम करती है, उसको ब्लेम करते हैं, भाई हमारे पेरेंट्स ऐसे थे, उन्होंने हमें ठीक से पालना नहीं दिया, हमारे स्कूल कॉलेज का एनवायरमेंट ऐसा है, हमारे अड़ोस पड़ोस की परिस्थितियां ऐसी है, जिसके कारण हम जो है वो वेवार्ड हो रहे हैं, रास्ते से हट रहे हैं, अच्छे रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। लेकिन वो जो मैसेज था वो ये था कि आपके जीवन के लिए आप ही जिम्मेवार हैं, ठीक है कि नहीं। तो उस जिम्मेवारी को स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। तो क्या होगा? जो मूर्ति आप अपने आप को बनाना चाहते हैं, उस दिशा में काम करिए और अपने आप को अच्छी मूर्ति बनाइए, ठीक। लेकिन बीकेस के लिए ऐसा नहीं है। बीकेस के लिए क्या एक्स्ट्रा है, क्या अलग है उनसे? सभी को ये एम्बलम समझ में आया ना? क्या था उसमें मैसेज? कि आप अपने जीवन के खुद मूर्तिकार हैं, अपने जीवन को खुद बनाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते, अपने लिए ऐसा नहीं बोलते। अपने लिए हम क्या बोलते हैं? हमें बनाने वाला कौन है? देखो, कोई व्यक्ति जिसने कभी मूर्ति बनाया ही नहीं, वो मूर्ति बनाने जाए तो कभी टेढ़ा बांका भी बना सकता है कि नहीं? परफेक्ट मूर्ति तो नहीं बनाएगा। लेकिन विश्व का जो परफेक्ट मूर्तिकार है वो किसी पत्थर को तोड़ फोड़ सकता है, वेस्ट कर सकता है? कर सकता है नहीं, वो हर पत्थर को अच्छा मूर्ति बना सकता है। कल मेरे पास एक बहन लेके आई, दीदी मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। क्या गिफ्ट था? साबुन में अपने नाखून से ऐसे ऐसे करके उसने एक बहुत सुंदर कृष्ण का मूर्ति बनाया है, अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण पत्ते पे, पीपल के पत्ते पे है। साबुन को अंगुली से मतलब नाखून से ऐसे ऐसे कुदेर कुदेर के उसने तीन चार घंटे में, तीन घंटे के अंदर ही वो बड़ी सुंदर मूर्ति बना दी है। अब देखो मूर्तिकार क्या नहीं कर सकता है। हमारे पास लेके आवे कोई साबुन बना सकते हैं कुछ? उसका नाक बनाएंगे तो कान टूट जाएगा, कान बनाएंगे तो नाक नहीं आएगा, आंखें बनाएंगे तो एक टेढ़ी आएगी एक सीधी है कि नहीं, क्योंकि कभी बनाया ही नहीं मूर्ति और आज बनाने चले तो क्या होगा। लेकिन जो मूर्तिकार है वो क्या कर सकता है? वो अच्छे से अच्छी मूर्ति बना सकता है, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए वो भले आज का युवक, आज की दुनिया अपने जीवन खुद बना रहे हो, इसलिए टेढ़े बांके जीवन बन रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन की जिम्मेवारी किस पे है? किसको सौंपा है हमने अपने आप को? दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हैं, उस मूर्तिकार को ये पत्थर समर्पित है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार को ये पत्थर समर्पित है, तो वो कैसा बनाएंगे इसे? कैसा बनाएंगे? हाँ, मेरे सामने है, शायद आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। देखो कितना प्यारा लक्ष्मी नारायण का चित्र है। बाबा हमेशा एक ही एम ऑब्जेक्ट देते हैं। अच्छा, फरिश्ता है ये, देखो आपके सामने भी पूरी राज दरबार लगी हुई है, ठीक है कि नहीं? तो बाबा हमें ये बना रहे हैं, देवी देवताएं, ठीक। लेकिन हमें करना क्या होगा इसके लिए? मुझ पत्थर को भगवान मूर्ति बनाने जा रहा है, मुझे क्या करना है? क्या करना है? मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनेंगे फिर कहानी सुन के बताना हमें इसमें क्या करना है। उस कहानी का दूसरा एक साइड भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे ही जीवन में परिस्थितियां क्यों आती हैं, मुझे ही सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्यों आते हैं? मैं तो बाबा का इतना डेडिकेटेड, इतना अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो किसी को कभी कष्ट नहीं देता हूँ, मैं तो हर किसी के लिए अच्छा सोचता हूँ, लेकिन मेरे सामने क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं? बताइए क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं? पिछले जन्म का हिसाब किताब, कुछ अच्छा सा जवाब दीजिए जो आनंद आ जाए। हमारे साथ कोई पिछला अगला नहीं। मैं तो ऐसा मानती हूँ, जिस दिन बाबा के आगे सरेंडर हो गए, कट गए, मर गए, बाबा के हो गए, काशी कलवट खाते हैं ना, बाबा कहते हैं उसमें भी तो सारे अगला पिछला पाप चुक्त हो जाता है, तो हम भी तो बाबा पे काशी कलवट खा गए, तो हमारा पिछला कोई पाप नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, मोस्टली नहीं होगा, क्योंकि मर गए हैं, उस पे बलिहार हो गए हैं। फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। बलिहार होने वाली आत्माओं के पास भी परीक्षाएं आती हैं। क्यों आती है? अब मैं कहानी सुनाती हूँ, फिर उसके बाद आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है? ये कहानी है किसकी, वो भी आप सुन लीजिए, सुनते सुनते बताना। एक बार एक मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा की गई, ठीक है? बहुत भाई बहनों ने पहले भी सुना होगा, हमने ये कहानी पहले भी सुनाई हुई है, लेकिन ज्यादातर भाई नए, भाई बहने नए हैं तो उनके लिए रिपीट नहीं होगा, उनके लिए नई कहानी होगी। आज क्या दिन था? मूर्ति का प्रतिष्ठा दिवस, ठीक है? बहुत सुंदर मंदिर है और उसमें मूर्ति बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर, उसमें इतना आकर्षण है, लोगों को सिद्धि की अनुभूति हो रही है। तो अमृत वेले से ही समझो 3 बजे से भक्तों की भीड़ शुरू हो जाती है और भक्त आकर के नैवेद्य से उस मूर्ति की पूजा किए जा रहे हैं। हर कोई आ रहा है, जय जयकार कर रहा है, खूब क्या कहें, पूजा की सामग्री लेके आया है और पूजा कर रहा है। बहुत भक्तों की भीड़, बहुत चहल पहल, सुबह 3 बजे से रात को 11 बजे तक मंदिर में बहुत भीड़। अब रात को 12 बज गए हैं, सब भगत मंदिर से जा चुके हैं, मंदिर में सन्नाटा है चारों ओर, कोई भी नहीं है। सुना, मंदिर में कोई भी नहीं है, चारों ओर सन्नाटा है। उस समय एक आवाज आती है, वो आवाज बोलता है कि वो ऊपर वाला इतना निर्दयी क्यों है, उसने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। क्या तुम सुन रहे हो? अंदर से दूसरी आवाज आई, हाँ मैं सुन रहा हूं। कहा, तुम्हें याद है कि हम दोनों पहाड़ की गोद में सदियों तक एक साथ थे? क्या तुम्हें याद है? अंदर से आवाज आई कि हाँ मुझे याद है। फिर कहा, एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों एक साथ ही पहाड़ की गोद से उससे अलग होकर के जल धारा में यात्रा शुरू करने निकले। दोनों ही जल धारा में बहते बहते नदी के किनारे आके पड़े। क्या तुम्हें याद है? दूसरी आवाज ने कहा, हाँ मुझे याद है। कौन किससे बात कर रहा था? अच्छा, कौन सा पत्थर था, अभी कहानी आगे बताएगा। हा? फिर कहा कि नदी के किनारे हम दोनों सालों तक इकट्ठे पड़े रहे, तुम्हें याद है? हाँ याद है। अचानक एक दिन एक मूर्तिकार वहां से निकल रहे थे, उनकी दृष्टि एक साथ ही हम दोनों के ऊपर पड़ी। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। उस मूर्तिकार ने हमें एक ही साथ अपने मूर्तिगार में लेके आया, जहां वो मूर्तियां बनाता था। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। कहा, फिर वो भगवान ऊपर वाला इतना अन्यायी क्यों है कि तुम अंदर बैठे पूजा पाते रहे, लाखों श्रद्धालु तुम्हें पूजा करते रहे, और मैं बेचारा दहलीज पे पड़ा रहा, सब मुझे अपने पांव से रोंदते रहे, मैं चीखता रहा चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। इतना बड़ा अन्याय उस ऊपर वाले ने क्यों किया? अब समझ में आ गया कौन दोनों बात कर रहे थे। दहलीज पे पड़ा पत्थर अंदर मूर्ति बने पत्थर से बात कर रहा था। अब आप बताइए, भगवान ने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया होगा? क्या जवाब दिया होगा अंदर के मूर्ति ने? सोच लीजिए, सुनना तो संभव नहीं है, लेकिन आप अपने लिए सोच लीजिए, अपने आप को उत्तर दीजिए कि क्या कारण हो सकता है। बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक, बिल्कुल आपने राइट आंसर सोचा है। उसके बाद अंदर वाले मूर्ति ने कहा कि भाई अब तुम्हारी कहानी पूरी हुई, मैं कुछ बोल सकता हूँ? कहा, बोलो। कहा, तुमने जो कहानी सुनाई वो सत्य अवश्य है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। सत्य है लेकिन संपूर्ण नहीं है। तुम संपूर्ण कहानी सुनना चाहोगे? मैं सुनाता हूं। तो उसने संपूर्ण कहानी सुनाई। ये सत्य है कि पहाड़ की गोद पे हम दोनों पत्थर सदियों तक रहे। ये भी सत्य है कि हम दोनों एक ही साथ टूटे। ये भी सत्य है कि दोनों सालों तक नदी किनारे एक साथ पड़े रहे। वो भी सत्य है कि शिल्पी की दृष्टि हम दोनों पे एक साथ ही पड़ी, शिल्पी लेके भी साथ में आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शिल्पी की दृष्टि मुझसे पहले तुम पे पड़ी थी। उन्होंने तुम्हें लिया और मूर्ति बनाने के लिए जैसे ही एक हथौड़ा मारा, तुम टूट गए, तुम चीख पड़े, तुम कहार उठे। तो मूर्तिकार ने क्या किया? तुम्हें छोड़ दिया। और उसके बाद 6 मास तक क्या होता रहा याद करो। छेनी और हथौड़े से मूर्तिकार रोज धाए धाए धाए, तक तक थक थक, जो भी है, प्रहार करते रहे, लेकिन मैंने कभी भी मुख से उफ तक नहीं किया। सुना क्या हुआ? मूर्तिकार के उस प्रहार को, छेनी और हथौड़े से पड़े प्रहार को मैंने कभी भी उफ तक नहीं किया। और आज वो दिन आया है मेरे भाई, अगर तुम मूर्तिकार के प्रहार से टूटे नहीं होते तो एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि मेरी जगह तुम होते। मैं कहां होता वो दूसरी बात है, वो तो उसका सेकंड ऑप्शन होता, लेकिन मेरी जगह तुम होते। ठीक है, तो हमारे जीवन में आ रही परिस्थितियां हमारे कर्म भोग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इस जन्म के कर्म भोग हो सकते हैं, बाबा के बनने के बाद के कर्म भोग हो सकते हैं, हमारे इस जन्म से पूर्व के जन्मों के कर्म भोग नहीं होना चाहिए शायद, अगर मैं ऐसा मान रही हूँ। आप लोग जैसा मानना चाहे मान सकते हैं, क्योंकि हमने काशी कलवट खाई है। भक्ति में काशी कलवट खाने वाले के अगर पाप धुल जाते हैं, अगले पिछले बाबा कहते हैं हिसाब किताब पूरे हो जाते हैं, तो हमारे भी होने चाहिए। लेकिन आज दादी रतन मोहिनी जी कल हम लोगों से मिल रही थी, एक बहुत अच्छी बात कही, कहा कि जब हम लोग समर्पित हुए थे तो हमने बुद्धि बाबा को समर्पित कर दी थी। सबसे पहले क्या समर्पित किया? बुद्धि समर्पित किया। हमारी बुद्धि आज तक भी नहीं चलती है, जैसा बाबा चलाता है वैसी चलती है, उससे अलग हमारी बुद्धि नहीं चलती है। लेकिन कुछ आत्माएं हैं जो बुद्धि समर्पित नहीं कर पाती हैं, तो उनकी बुद्धि भी चलती है। भाई हमारे जीवन के लिए हम खुद मालिक हैं, हमें ऐसा सोचना चाहिए, परिस्थिति में कौन आएगा खड़े होने को, तो हम ऐसा इस प्रकार से सोचते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि उस समय सोच रही है। हमारी बुद्धि ज्यादा बुद्धिमान है कि जिसको बुद्धि दिया है वो ज्यादा बुद्धिमान है? तो सोचना है इस सौदा में कैसा क्या सौदा करना ज्यादा अच्छा रहेगा, वो एक बहुत सुंदर अलग टॉपिक है कि जिस दिन हम बाबा के बने हमने उस दिन बाबा को बुद्धि भी समर्पित कर दिया। तो जब हम मर गए, कट गए, काशी कलवट खा लिया, तो हमारे कोई पिछले कर्मों का हिसाब किताब रहना नहीं चाहिए, नहीं है। फिर इस जन्म में जो कुछ हो रहा है क्या है? या तो इस जन्म में हम कुछ ना कुछ छोटी छोटी भूलें कर रहे हैं जिसके कारण हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, या वो मूर्तिकार हमें मूर्ति बनाने में लगा हुआ है। उसके मूर्ति बनाने की यही विधि है, गॉड इज वर्किंग ऑन मी, वो मुझ पे कुछ कर रहे हैं, वो मुझे बना रहे हैं। और उस बनाने में ये जो परिस्थितियां आ रही हैं, इन परिस्थितियों का आना लाजमी है, नहीं तो मैं अनुभवी नहीं बनूंगा। अगर यहां से कुछ नहीं निकालेंगे तो नाक का शेप कैसे आएगा? अगर यहां कुछ प्रहार नहीं बने बजेगा तो आंखें कैसे, ये कान कैसे बनेगा? ठीक है कि नहीं? तो हर प्रकार से जो भी बातें, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, एक बार आप संपूर्ण समर्पित होकर के बाबा को, जीवन को देखिए। इस जीवन में मैं क्या कहें, दावे के साथ तो क्या, लेकिन कह सकती हूँ अपने अनुभव से ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे इस जीवन में, हर ब्राह्मण बच्चा यही सोच सकता है कि हमारे इस जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई होगी जो हमें कुछ सिखाना ना चाहती हो, जो हमें कुछ बनाना नहीं चाहती हो। हर परिस्थिति हमें सिखाना चाहती है, हमें बनाना चाहती है। हाँ, उस परिस्थिति के लिए मेरा अप्रोच क्या रहता है वो फिर उस चीज को उस प्रकार से बनाता है। मैं उस परिस्थिति के लिए क्या सोचता हूँ? अगर मैं सोचता हूँ कि ये परिस्थिति नहीं है, ये बाबा का स्टाइल है मुझे बनाना, तो वो बाबा का स्टाइल होगा। और अगर मैं हर परिस्थिति को सोचता हूँ कि ये मेरा कर्म भोग है, तो वो कर्म भोग ही होगा। तो सब चीजें किस पे निर्भर करती है? मेरे सोचने पे, मेरी मान्यता पे निर्भर करती है। अब आप बताइए कि हमें क्या करना है, मूर्ति बनना है कि नहीं, सोचना है कर्म भोग ही भोग रहे हैं, क्या सोचना है? भाई मूर्ति बन रहे हैं, बाबा हमें बना रहे हैं। तो बहुत प्यार से अपने आप को, अपने जीवन को बार बार बाबा को समर्पित करिए, बार बार समर्पित करिए। हर सेकंड देखिए कि मन ऐसा है कि जैसे आप देखे आते हैं बाबा को, ये फिर यहाँ आके बैठा हुआ होता है। अभी दे दिया बाबा, सब कुछ आपका है, ये तन आपका, ये मन आपका, ये धन आपका। हाँ, बाकी बाबा जो कहते हैं हम बच्चों के लिए, मनसा वाचा कर्मणा, बाबा आपको समर्पित है। लेकिन फिर देखना मन आके इधर, वो सोचता है अपने ढंग से, फिर उसे समर्पित करिए, बार बार समर्पित करिए, तो देखना कि बाबा बार बार हमें अच्छी तरह से बनाने में लगेंगे, बहुत जल्दी संपूर्ण बनाएंगे। कैसे बनाते हैं बाबा संपूर्ण? बाबा हमें चार सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इनसे बाबा हमें कैसे बनाते हैं बताइए? ये देवी देवताओं को अलंकार देख रहे हैं, ये अलंकार कैसे सजते हैं, अलंकार कैसे मिलते हैं? बाबा ने कहा ना, देखो महलों में ये सारे हीरे लगे हुए हैं, हीरों की जड़त है, सोने की महल है, इतने आलीशान महल होंगे और इस प्रकार से आपका पुष्पक विमान होगा, इस प्रकार के कॉस्ट्यूम ड्रेस आप इस प्रकार के पहनेंगे, ज्वेलरी आप उस प्रकार के पहनेंगे, सब चीज आपके पास अतिचार होगा। वो कैसे आता है? क्योंकि बाबा तो लॉ मेकर है, बाबा लॉ ब्रेकर नहीं हो सकता है कि आओ आओ तुम तो मेरे बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें दे देता हूँ, बाकी दुनिया मेरी नहीं है मैं उनको नहीं दूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, कुछ विधि के हिसाब से ही बाबा को देना पड़ेगा क्योंकि बाबा लॉ मेकर है। तो बाबा हमें ये संपन्नता कैसे देते हैं? ज्ञान से। कैसे देते हैं? ज्ञान से। जो बच्चे ज्ञान के खजानों को जितनी रमत गमत करेंगे, ज्ञान के खजानों का जितना रमत गमत करेंगे, ज्ञान के ऊपर जिन बच्चों का जितना कमांड होगा उतना ही उनको धन प्राचुर्य वहां मिलेगा। बाबा ने कहा ना बच्चे, एक एक बाबा के महावाक्य लाखों रुपयों का है, कभी कभी कहा पद्मों का है, हर कदम में तुम्हारी पद्मों की कमाई हो रही है। तो ये ज्ञान योग का मनन चिंतन मंथन जो आत्मा जितनी अच्छी तरह से करेगी उतना ही वो धन का अधिकारी, धन के अधिकारी बनती जाएगी। स्वर्ग में, सतयुग में, सतयुग त्रेता युग में ही नहीं लेकिन सारे कल्प में उस आत्मा को उतना ही धनवान होना होगा। बाबा कहते हैं ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, जितना जो आत्मा ज्ञानी है उतना ही वो कमाएगी। तो वो अभी के लिए भी उतना ही लागू है कि हम आत्माएं जितनी ज्ञानी बनती जाएंगी उतना ही अकीचार धन सारा कल्प हमारे पास रहेगा, ठीक है? अगर धनवान बनना है तो क्या करना होगा? ज्ञानवान बनना है। लेकिन बच्चे, ज्ञानवान बच्चों को मनहूस नहीं बनना है। बाबा फिर मनहूस किनको कहते हैं? मनहूस किन्हें कहते हैं? एक तो ज्ञानवान बच्चे, फिर मनहूस कैसे हो सकते हैं? जो बांटते नहीं है, जो देते नहीं है, वो मनहूस हैं। अब मैं कहूँ मुझे ज्ञान तो बहुत है लेकिन मैं किसी को सुनाऊंगा नहीं। भक्ति में बोलते हैं ना, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसे किसी को मत सुनाओ। हाँ, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? सद्गुरु ने जो मंत्र दिए हैं वो सभी को सुनाओ, कोई सुने या नहीं सुने पकड़ के सुनाओ। कई हमारे पुराने भाई लोग होते थे जिन्होंने प्रतिज्ञा प्रण ली हुई थी, जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाएंगे खाना नहीं खाएंगे। ज्ञान सुनाना उन दिनों इतना सहज नहीं था जैसा आज है। आज आप सुनाओ तो लोग तो इतने सुनने को आते हैं, बात मत पूछो, निमंत्रण देते हैं सुनने के लिए, सुनने का आग्रह रखते हैं। उन दिनों ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान लोग सुनना इतना पसंद नहीं करते थे। अच्छा, तुम वही ज्ञान सुनाओगे? रहने दो, सुनते ही नहीं थे। अब प्रण ये है कि जब नहीं कोई सुनेगा तो भोजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो क्या करें? तो आप सोचो वो कैसे कैसे भी करके आत्माओं को ज्ञान सुनाते थे। क्यों? नियम भी तो रखना है ना, बाबा ने जो बोला है मनहूस नहीं बनना है। तो मुझे देखना है मैं ज्ञान खजानों को अपने पास इकट्ठा करके मनहूस तो नहीं बन रहा हूं। जितना दान देंगे उतना बढ़ेगा। धन दिए धन ना खूटे, बाबा बोलते ना, ज्ञान रत्नों का दान करेंगे तो ये उतना ही बढ़ता जाएगा, मल्टीपल होता जाएगा, कई गुणा बढ़ता जाएगा। जितना आप दान करेंगे उतना ही वो कई गुणा होकर के बढ़ता जाएगा। तो इसलिए पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा? ज्ञान। ज्ञान कैसे अर्जन करना है? बाबा का हर एक बच्चा अपने जीवन में इतना तो जरूर करे कि बाबा की जितनी मुरलियां चली हैं मुरलियां जरूर पढ़े। नए नए बच्चे हैं, अभी अव्यक्त मुरली नहीं समझ में आती है, तो साकार मुरलियां जरूर पढ़े। और जब अच्छे पुराने हो गए हैं, अव्यक्त मुरलियां समझने लग गए हैं, तो बाबा के वो बच्चे 69 से अभी तक चली हुई सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़े, लक्ष्य बना लें, बीच में विनाश हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्य रखें कि मैं जल्दी से जरूर पढ़ूं। ये खजाना है, जितना बटोरूंगा उतना मेरी अपनी प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है, तो इसलिए बहुत अच्छी रीति से उसको स्टडी करना है। फिर हर एक की अपनी अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पढ़े और फिर उसे सुनाए। आप क्या सुना रहे हो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कैसे सुना रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा अनुभव आपको सुनाते हैं। हम सोचते हैं कि हम ज्ञान बड़ा अच्छा प्रोनाउंस कर पाते हैं, बड़े सुंदर रीति से सजा के बोल पाते हैं तो लोग हमें ज्यादा सुनेंगे। नहीं, धारणाएं तो आपकी आंतरिक इच्छा शक्ति के ऊपर दूसरों पे वो प्रभाव डालता है। एक माता थी, हरियाणा की एक माता, जाठ माता थी, जाठनी माता मतलब जैसे भी समझे, गांव की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बाबा की बच्ची थी, ज्ञान सुन लिया और ज्ञान सुनाना था। उन दिनों प्रदर्शनियां बहुत लगती थी, तो प्रदर्शनी में समझाने चली गई लक्ष्मी नारायण के चित्र पे, कहा कि ये लक्ष्मी नारायण है, जब इनका ट्रैक्टर ठीक होता है तो ये लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं और जब इनका ट्रैक्टर बिगड़ जाता है तो ये हम जैसे बन जाते हैं। अब ये ट्रैक्टर क्या था बताइए? हाँ जी तो लेकिन इतने नशे से वो सुनाती थी कि सारी भीड़ उसके पास होती थी। अब बोलो क्यों भीड़ होती होगी उसके पास? उसको तो बोलना भी नहीं आता था, करेक्टर शब्द ही नहीं बोलना आता था, तो क्या ज्ञान सुनाएगी, लेकिन भीड़ उसके पास होती थी। और रोज वो 10-20-12-25 मतलब जितना भी राउंड ले सके सुबह से उतने राउंड ज्ञान समझाती थी सबको। कैसे समझाती थी? दिल से समझाती थी। तो लोग उसके पास आते थे और वो लोग दूसरे दिन भी आते थे, ठीक है। तो जो भी जैसे बाबा के बच्चे हैं, शब्दों में नहीं जाना है। अगर नहीं, कोई बहुत ज्ञानी आपके सामने आ जाता है और आपकी सोचता है कि आप जो ज्ञान सुना रहे हैं उसके स्टैंडर्ड का नहीं है, तो क्या करना चाहिए? फिर उसको बोलो भाई साहब जैसा मुझे आता है वैसा मैं सुना रहा हूं, लेकिन अगर ज्ञान अच्छी तरह से रिफाइन आपके बुद्धि की लेवल पे सुनना है तो हमारे यहाँ बड़ी दीदियां हैं, बड़े भाई लोग हैं, आप हमारे आश्रम में तो आइए, वो आपको समझा देंगे, ठीक है। तो उस आत्मा को लाने का सारा कमीशन किस पे जाएगा? आप पे चला जाएगा। तो ज्ञान बांटना है, ज्ञान जीवन में लाना है, तो ये ज्ञान का सब्जेक्ट रहा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? योग। योग क्या होता है? योग से हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। और आंतरिक शक्ति क्या होता है? अभी इस पार्क में सूरज भाई जी एक क्लास करा रहे थे। कुछ बातें आपको पता तो होती हैं लेकिन भूल चुके होते हैं क्योंकि उसे कभी रिपीट नहीं करते हैं, उसे नहीं सुनते हैं, नहीं बोलते हैं, तो उन बातों से थोड़ा दूर चले जाते हैं। और मुझे वो क्लास सुन के इतना मजा आया, मैं आपको क्या बताऊं, जैसे खो गए हम। क्या सुना रहे हैं बाबा? जैसे उनके द्वारा हैं तो बहुत महारथी भाई, और जैसे उन्होंने बहुत अच्छी चर्निंग की हुई है, लेकिन जब वो सुना रहे थे सतयुग के बारे में, स्वराज्य अधिकारी से हम विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे, उस टॉपिक पे क्लास था उनका। बहुत अच्छा लगा योग की ये बात। कहा प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था, अगर किसी देश में अकाल आ जाए तो कहते थे कि राजा ने जरूर कोई पाप किया होगा, और अगर खेती में अच्छी फसल हो जाए, पेड़ों में अच्छा फल निकल आए, तो लोग कहते थे कि हमारा राजा बड़ा पुण्यवान है। तो इसलिए क्या करते थे, उसमें से पहला फल या अच्छे से अच्छा फल लेकर के राजा के पास जाते थे। सुना? मतलब राजा के सोच का प्रभाव सारे राज्य के धरनी पर, प्रकृति के पांचों तत्वों पर पड़ता है। तो कहा कि अगर हम योग ठीक करते हैं, योगी आत्माएं हैं, तो हमारी परिस्थितियां ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। बहुत गुही है, बहुत गहरी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। हाँ, आजकल तो सब चीजें सीरीज में, डीवीडीज में अवेलेबल है, आप लोगों को जिनको इंटरेस्ट होगा भले लेके सुनना। लेकिन योग के ऊपर मेरी योग की धारणा मुझे कैसे पावरफुल कर सकती है, एक बहुत सुंदर जैसे आत्मा को बल देने वाली बात है कि मैं आत्मा योग से इतनी शक्तिशाली हो सकती हूँ कि प्रकृति के पांचों तत्व भी मेरे सोच के हिसाब से चलेंगी, मेरे आसपास जो भी परिस्थितियां आ रही हैं वो मेरी अपनी बनाई हुई है, मेरी सोच की बनाई हुई है। जैसे वाइब्रेशंस मैं स्प्रेड कर रहा हूँ वो मुझे रिस्पॉन्ड कर रही हैं, रिजाउंड कर रही हैं। तो इसलिए अगर मेरी बड़ी ऊंची योग की स्थिति है तो मैं किसी भी परिस्थिति को पार करके एंजल बन सकता हूँ, मैं प्रकृति को परिवर्तन कर सकता हूँ। देखो बाबा हमेशा कहते हैं ना, शुरू शुरू की मुझे दादियों की ट्रेनिंग याद आ रही है। हाँ, हम जब स्कूल से कहीं बाहर जाते थे ना, तो मिठू दादी जी थे, पटियाला की बात मैं बता रही हूँ, उन दिनों हम वहाँ थे, तो दादी हमें सिखाती थी कि जहाँ पे भी जाओ ना, जो भी पेड़ पौधा जो कुछ मिले, व्यक्ति आत्माएं तो मिले वो ठीक है, लेकिन प्रकृति के पांचों तत्वों को भी दृष्टि देना। क्यों? तुम्हारी दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होने वाली है। देखो कितनी ऊंची सोच, एक छोटे बच्चे के मन में अगर ये अंदर बात चली जाए कि मेरी दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, तो सोच कितना ऊंचा उसको बना सकता है। हा? तो ये जैसे कूट कूट के भर दिया कि तुम्हारी दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, लेकिन मेरी दृष्टि सृष्टि को कब परिवर्तन करेगी? कब परिवर्तन करेगी? प्रकृति और दृष्टि, जिनमें से जो पावरफुल होगा वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है कि नहीं? तो अगर प्रकृति पावरफुल है तो वो मेरी दृष्टि को इन्फ्लुएंस करेगी, और अगर मैं पावरफुल हूं तो मैं प्रकृति को इन्फ्लुएंस करूंगी, ठीक है कि नहीं? तो क्या करना है? अपनी दृष्टि को पावरफुल बनाना है। और वो शक्ति कहां से आएगी? योग से। देखो जब हम योग करते हैं तो आंखें बंद करके योग करते हैं कि नहीं? कैसा योग करने को बाबा ने बोला है? सारी दुनिया आंखें बंद करके योग करती है, एक ब्रह्मा कुमारी इसका योग है जिसमें आंखें खोल के योग करने को बोला जाता है, लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं? बाबा ने हमें खुली आंखों से योग करना सिखाया है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होगी, और कहीं हमें किसी को दृष्टि देना हो, उसको वाइब्रेशंस देने हो और आंख बंद कर दें तो क्या होगा? मुश्किल है कि नहीं? तो इसलिए क्या करना है? खुली आंखों से योग करके सबको पावर देना है। लेकिन वो पावर कब दे सकते हैं? जब खुद बाबा से उतनी शक्तियां लेंगे। तीसरी सब्जेक्ट क्या है? धारणा। धारणा का क्या मतलब होता है? एक्चुअली धर्म ही धारणा है। धार्यते इति धर्मः। क्या बोलते हैं शास्त्र? क्या बोलता है? हमारी जीवन की धारणाएं ही धर्म है। कोई व्यक्ति धार्मिक है, कोई व्यक्ति विधर्मी है, अधर्मी है, कहते ना ये तो अधर्मी व्यक्ति है, किसी को कहते ये धर्मी व्यक्ति है, इनके पास बहुत धर्म है, धार्मिक है ये। तो ये किसी को धार्मिक क्यों कहा जाता है, किसी को धार्मिक क्यों नहीं कहा जाता है? हो सकता है कि उसने तिलक लंबा भी लगाया हुआ, कुर्ता भी एकदम सफेद लंबा पहना हो, लेकिन फिर भी धार्मिक किसको बोलते हैं लोग? जिनके प्रैक्टिकल जीवन की धारणाएं ऊंची होती है वो धार्मिक कहलाते हैं। जिनके प्रैक्टिकल जीवन की धारणाएं ऊंची नहीं है, वो चाहे रोज घंटी बजाते रहे लेकिन उन्हें कोई धार्मिक नहीं कहता है। तो हमें भी, हम खाली सत्य राज्य की नहीं लेकिन सत्य धर्म की भी स्थापना कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सत्ययुग में क्या होगा? सत्ययुग की महिमा बताइए, क्या है महिमा सत्ययुग की? वो तो देवताओं की है। सत्ययुगी दुनिया की महिमा क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, फिर क्या है? धर्म सत्ता, राज्य सत्ता एक के हाथ में। सुना? ये एक बहुत बड़ी देन है जो द्वापर से कम दिखाई दी है। है रहे क्या, एक दो बार है, मतलब हिस्ट्री में भी ऐसी बातें आती है, लेकिन बाकी बहुत कम जगह पे ऐसा हो कि धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक के हाथ में हो। राजा भगवान का रूप होता है, लेकिन जब राजगुरु प्रवेश करें तो क्या होगा? राजा को अपनी कुर्सी से उठना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन राजा से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, कहां सत्ययुग त्रेतायुग में। इसलिए राजा कभी किसी के लिए उठेगा नहीं, कुर्सी से नहीं उठेगा, उसके हाथ में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही होंगी। ठीक है, राज्य सत्ता तो कैसे मिलेगा वो पता है, लेकिन धर्म सत्ता कैसे मिलेगी? धर्म सत्ता कहां से आएगा? हमारे धर्म से ही, हमारे जीवन की धारणाओं से ही धर्म सत्ता होगी। और धर्म क्या है? धर्म के लिए कहते हैं धर्म रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए जब देश में कुछ ऐसा विपत्ति आता है तो लोग यही कहते रहे हैं आज तक कि धर्म राजा जो है वो धार्मिक नहीं है, और अगर अच्छा हो रहा है तो राजा को धार्मिक बताते हैं। माना एक धर्म आत्मा का प्रभाव बहुत दूर दूर तक सभी चीजों पे पड़ता है। तो मैं अगर ऊंची धारणाएं अपने जीवन के रखूंगा तो मैं धर्म आत्मा कहलाऊंगा। और बाबा के वो बच्चे जो धारणाओं की रक्षा करते हैं, धारणाएं उनकी रक्षा करती हैं। सुना? क्या सुना? जो जीवन में धारणाओं की रक्षा करते हैं उनकी वो धारणाएं उनकी रक्षा करती हैं। कई बाबा के बच्चे सोचते हैं कि बहन जी क्या ये धारणा करना जरूरी है, वो धारणा करना जरूरी है। आप कहते हो खाने पीने की बात, लेकिन बाहर जाते हैं तो क्या करें? बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ऊंचे पोस्ट पे हैं, बहुत बिजी हैं, लेकिन बाबा के बीवी धारणाओं को एकदम अक्षर अक्षर पालन करते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, दुनिया में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा बहुत ऊंचे पोस्ट पे हैं, लेकिन वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। आरएसएस वाले हैं कई लोग ऐसे हैं। अभी रिसेंटली कुछ कोई भाई आए थे और मिले, कहा कि मैं बाबा का ज्ञान जानता हूँ, पहले सुना था लेकिन बहुत दिनों से कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो भी अपनी धारणाओं में बड़े पक्के हैं। तो जो धारणाएं बाबा ने जो भी धारणा दिया है, धारणाएं भी हमारी चार है, याद है ना? क्या धारणाएं, क्या धारणाएं है? पहली धारणा क्या है? चार पिलर राजयोग के, याद आ रहे हैं कि नहीं? आप लोग फिर प्रदर्शनियां समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं किसी को? चार पिलर के चार पाए कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दिव्य गुण, सत्संग, ठीक है कि नहीं? ये हमारे चार पिलर हैं। अब इनको जो जितनी धारणा करेगा वो उतना धार्मिक बनेगा। धर्म रक्षति रक्षिता, इन धारणाओं के कारण जो आत्माएं धार्मिक आत्माएं धर्म आत्माएं बन रही हैं, धर्मों में धारणाओं में श्रेष्ठ हैं, वो धर्म वो धारणाएं उनकी रक्षा करेंगी। और अगर हम धारणाओं में कंप्रोमाइज करेंगे ना तो धारणाएं भी ठीक परिस्थितियों में कंप्रोमाइज कर लेंगे, ठीक है? तो इसलिए बाबा तो धारणा की बातें मुरली में खुद बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो बच्चों को क्या श्रेष्ठ बनाना है? अपना धारणाएं श्रेष्ठ बनानी है। उसके बाद क्या है चौथा सब्जेक्ट? सेवा। सेवा क्या होता है? क्या है सेवा? हाँ जी, सेवा क्या है? हाँ, बचपन की मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किए रखा है और आज तक भी वो भजन मोटिवेट करता है। वो भजन है, नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को दूजे को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे इस धरती का भगवान रे। है ना? कभी किसी नदी को अपना जल खुद पीते देखा है? नदी कभी जल अपने लिए अलग रखता है? हमने इस पे एक कविता बनाई थी, हाँ, और वो कविता भी बहुत अच्छी है, फिर कभी समय मिलेगा तो आपको सुनाएंगे। नदी अपना जल खुद नहीं पीती है, पेड़ अपने फल खुद खाते हैं? खाते हैं? नहीं खाते। उस पे भी एक कहानी है, हाँ, पेड़ देने में उसको कितना आनंद आता है बोलो। अपना फल खुद खाने के लिए एक फल रखता होगा? कोई पेड़ सोचता है मैं अपना एक फल तो खा लूं? खाता है, दूसरों को देता है। तो इसलिए देने वाला ही देवता है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य आत्मा अपने तन को मन को धन को जो कुछ उसके पास है, बाबा ने तो आगे भी बहुत उसका डेप्थ बताया है, जो कुछ मेरा है जब वो दूसरों के लिए समर्पित करता है, देता है, देने वाला बनता है, वो धरती पे भगवान बन जाता है। सुना? नदी की पूजा होती है, अभी कुंभ का मेला लगा है, लगा कि नहीं लगा? करोड़ों लोग गए वहां पे स्नान करने के लिए, सोचो कितने लाखों लोग जितने भी गए होंगे, कितने लोग, कितनी आत्माएं गंगा नदी की पूजा करते होंगे। नदियों की पूजा करने वाले देखो सारा भारतवर्ष है, किसी ना किसी रूप से लोग नदी की पूजा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों भाई? देने वाला है। पेड़ों की पूजा होती है, होती है कि नहीं होती है? पेड़ों की पूजा होती है, क्यों होती है? देने वाले हैं, देते हैं। किसी ने बहुत सुंदर एक और अच्छा इंटरप्रिटेशन अभी अभी एक दो साल हुआ सुने हुए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। देवताएं कितने होते हैं? कितने देवताएं होंगे टोटल? 33 करोड़। उन्होंने कहा नहीं नहीं, 33 करोड़ देवी देवताएं नहीं होते हैं, 33 कोटि देवी देवताएं होते हैं। कितने होते हैं? अब ये 33 करोड़ और 33 कोटि में कोई अंतर है? जिन्होंने इस कोटि और करोड़ के अंतर को जाना है, सुना है इसके बारे में, वो जरा हाथ उठाइए। नहीं सुना? हाँ, कुछ तो है ना जिन्होंने सुना है। कोटि और करोड़, कोटि का मतलब होता है प्रकार, ये ऊंच कोटि की चीज है, कहते हैं कि नहीं? कोटि माना प्रकार। तो उन्होंने कहा कि 33 प्रकार के ही देवी देवताएं हैं। सुना? सूर्य देवता है क्योंकि वो एनर्जी देते हैं सारे विश्व को, वृक्ष देवता है क्योंकि वो फल देते हैं, नदी देवता है क्योंकि वो जल देते हैं, वायु देवता है क्योंकि वो जीवन देते हैं, सांसें देते हैं, अग्नि देवता है वही ऊर्जा का स्रोत है। तो ये सब कोटि कैटेगरी के प्रकार के देवताएं हैं। तो उसी प्रकार हम मनुष्य आत्माएं और स्पेशली बाबा के बच्चे जो भी हैं, हम अपने आप को जितना भी ऊंचा समझते हैं, लेकिन इस धरती पे अगर भगवान बनना है, बाबा ने कहा ना एक तो भगवान और दूसरे भगवान भगवती, एक कैपिटल जी वाला गॉड, एक स्मॉल जी वाला गॉड। अगर भगवान भगवती बनना है तो क्या करना होगा? देना सीखना होगा। जो कुछ मेरे पास है वो देना सीखो। और इसमें बुद्धिमानी है। क्यों बुद्धिमानी है पता है? इस संसार में सब कुछ एक साइकिल में चलता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। क्या गोल घूमता है? जो आप देते हो वही घूम के आपके पास आता है, जो आप देते हो वही घूम के आपके पास आता है। बाबा के शब्द क्या है इसके लिए? बाबा क्या बोलते हैं? क्या दोगे तो क्या पाओगे? बच्चे अगर सुख दोगे तो सुख पाओगे, और अगर दुख दोगे तो डाडा डाडा वो क्या नहीं बोलना है, हाँ क्या पाना है, बाबा क्या बोलते हैं, कई बार खाली डॉट डॉट छोड़ देते हैं। तो जो दोगे वही अल्टीमेटली आपके पास आएगा, क्योंकि सब कुछ एक धुरी पे घूम रहा है, सब कुछ एक साइक्लिकल प्रोसेस पे चल रहा है। तो जो हम देंगे वही हमें मिलेगा, और जो आप पकड़ोगे क्या होगा? मुट्ठी में कभी रेत पकड़ी है? पकड़ के देखना रेत को, क्या होगा? जितना टाइट पकड़ोगे उतना वो सिरक जाएगा, और फिर हाथ देखो तो खाली। तो इसलिए जो मनुष्य अपने पास रखता है एक्चुअली वो उसके काम में नहीं आता है, लेकिन जो वो देता है वो उसका परमानेंट बन जाता है, वो इटर्नल बन जाता है। कैसे? देखो, कबीर जी ने एक बहुत सुंदर इस पे दोहा लिखा है। कुछ लोग गांव के सिंपल लोग कबीर जी के पास गए, कहा कबीर महाराज हमने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े संत पुरुष हैं, आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, अब कहाँ आप और कहाँ हम? हम गांव के लोग, हमें कोई शास्त्र वास्त्र नहीं समझ में आने वाला है, ना ही आप हमें इतना बड़ा कोई लेक्चर देना जो हमें समझ में नहीं आवे। हमें तो आप दो शब्दों में बताइए कि धर्म क्या है, आपने ये वेदों शास्त्रों में क्या पढ़ा है उसका सार थोड़े से शब्दों में बताइए। कबीर जी ने उस पे एक सुंदर दोहा लिखा है। क्या लिखा? कबीर कहते हैं चार वेद 6 शास्त्रों में, वेद कितने हैं? 4 है ना, सभी जानते हैं चारों वेदों को। 4 वेद 6 शास्त्रों में बात लिखी है दुई, दुख दिने दुख होत है, सुख दिने सुख होए। सुना क्या लिखा? हाँ, बहुत अच्छी ऊंची बात है कि मैंने चारों वेद पढ़ लिया, 6 शास्त्र पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिखने के बाद जो निचोड़ मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन शास्त्रों वेदों में दो ही बात लिखी है, बात लिखी है दुई। क्या दुई बात है? दुख दिन्हे दुख होत है, अगर तुम किसी को दुख दोगे तो क्या होगा? दुख मिलेगा। सुख दिन्हे सुख होए, सुख दोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। ठीक है, फिर क्या लिखा? पर हित सम धर्म नाही मेरे भाई, पर पीर सम नाही अधमाई। क्या लिखा, क्या कहते हैं वो? कि दूसरों को दुख देना उस जैसी अधमाई संसार में कुछ नहीं है और दूसरों को सुख देने जैसा पुण्य कार्य संसार में और कुछ नहीं है। तो क्या करना है, बाबा ने हमें बड़े ऊंच कोटि का दूसरी आत्माओं को सुख पहुंचाने का, शांति देने का बड़ा अच्छा तरीका बताया है। तो हम बच्चे हमेशा सोचें कि मेरे द्वारा कैसे किसी को सुख मिले, कैसे किसी को शांति मिले, कैसे किसी को खुशी मिले, ठीक है। तो जो मैं दूंगा वो मुझे मिलता जाएगा और मुझे देना ही है, देवता बनना है। क्या करना है, देना है, देवता बनना है, देने वाले ही देवता होते हैं। अच्छा भाई एक और कहानी सुनाऊं देवताओं की, देने में कैसे देवता बनते हैं और नहीं देने में क्या बन जाते हैं फिर,
मुझे बताना है कब बंद करना।
ओम शांति। तो कैसे देने में क्या होता है और नहीं देने में क्या होता है, देवताओं के क्वालिफिकेशंस क्या हैं और जो ना देवता है उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की रचना है देवता भी और दानव भी, और कौन, दैत्य, देवता दैत्य दानव जो भी हैं ये ब्रह्मा के उनके अपने ही पुत्र हैं, उनकी अपनी रचना है। तो दैत्यों को दानवों को हमेशा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता कि ये क्या है, भगवान विष्णु जो है वो हमेशा हमारे साथ क्या कहें चीटिंग करते हैं, वो देवताओं को प्यार करते हैं और हमें हमेशा दुत्कार करते हैं, हमें तो उनका प्यार मिलता ही नहीं है, इसलिए वो लोग विष्णु को नहीं पसंद करते हैं। दैत्य जो है वो हमेशा शास्त्रों में देखना वो भगवान विष्णु को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा शास्त्रों में दिखाया गया है। तो कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, परीक्षा कर लेते हैं। तो उन्होंने एक दिन दावत में, किन्होंने, भगवान विष्णु ने दावत पे दोनों को बुलाया। किसको किसको बुलाया होगा, देवताओं को भी बुलाया और दानवों को भी बुलाया। बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छी क्वालिटी के सुंदर लड्डू बनाए, ठीक है कि नहीं, और लड्डू रख दिया। कहा भाई खाना है, कहा देखो मैं देवताओं से ज्यादा प्रेम दैत्यों से करता हूँ, दानवों से करता हूँ, इसलिए पहले खाने का चांस किसको मिलना चाहिए, दानवों को मिलना चाहिए। कहा हे दानव वत्स आओ और ये लड्डू खाओ। दानवों ने क्या किया होगा, हाँ पर एक शर्त है खाने में, क्या शर्त है कि सबके कोहनियों पे, ये कोहनी है ना जो हमारे हाथों को फ्लेक्सिबल बनाता है, कोहनियों पे हम पट्टा बांध देंगे, ठीक है अब खाओ कैसे खाना है। दानव गए लड्डू खाने और वहां से फेंकना शुरू किया, किसी के सिर पे बजा, किसी के नाक पे, किसी के मुंह पे, सारा हुलिया बिगड़ गया लेकिन खाने को तो हुआ ही नहीं, ठीक। कहा वाह मेरे बच्चे बहुत अच्छा, आपने जो रंग रूप बनाना था बना लिया, अब देवताओं की बारी है, आओ भाई देवताएं खाओ। देवताओं ने क्या किया होगा, वो कैच करने में एक्सपर्ट थे, ऐसा तो क्या किया, देवता आए बड़े प्यार से आमने सामने खड़े हो गए, एक ने दूसरे को खिलाया, उसने इसको खिलाया और देखते ही लड्डू खत्म, देवताओं को आनंद आ गया, ठीक है। तो कहा ये अंतर है देवता और दानवों में, देवता देना जानता है, क्योंकि वो देता है उसे मिलता है, दानव देना नहीं चाहता है, वो सब कुछ अपने पास रखना चाहता है, वो होल्ड करना चाहता है, पकड़ के रखना चाहता है, जब पकड़ेगा जोर से तो सारी रेत सरक जाएगी, कुछ भी नहीं हाथ में आने वाला है। तो इसलिए हमें क्या बनना है, देवता बनना है, हमेशा देना है देना है देना है, बस देते जाओ। सुबह उठो जैसे ही अमृत वेले उठो उस समय ही सोचो कि मैं इस जगत को क्या दे सकता हूँ, मेरा पिता शिव बाबा संसार को कुछ देने के लिए आए हैं और इस समय मैं सारी सृष्टि को क्या दे सकता हूँ। हमारे पास कुछ देने को है भी सही कि नहीं है, है कुछ, क्या है भाई क्या है देने को। दादी जी कहती हैं, हमारी दादी जानकी कहती हैं, क्या कहती हैं, सफेद कपड़े जेब खाली, लेकिन हम है सारी दुनिया के वाली, हाँ कुछ नहीं है हमारे पास लेकिन हम बहुत कुछ हैं, हमारे पास बहुत माल है देने के लिए, सारी दुनिया जिस चीज को भिक्षा के रूप में मांग मांग के लिए, ऐसा कुछ देने के लिए हमारे पास है, क्या है, और कुछ नहीं तो शुभ भावनाएं शुभकामनाएं हैं, शुभ भावना शुभकामना बांटती रहिए। संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है, देखो किसने कितना सुंदर लिखा, बड़ा अच्छा लगा, बाद में उन्होंने उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, सुना? संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, when you are doing absolutely nothing, माना? खाली हाथ पांव बंद है नहीं, मुख आंखें बंद नाक बंद है नहीं, लेकिन जब आपका मन स्थिर है, कुछ नहीं सोच रहे हैं, असोचता वाली जब आपकी स्टेज आती है तो आत्मा इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसमें से उसकी ओरिजिनल किरणें निकलती हैं। आत्मा की ओरिजिनल किरणें क्या हैं? आत्मा सतोगुणी है, ठीक है कि नहीं? उसके सातों गुण उसके ओरिजिनल क्वालिटीज हैं। क्या हैं सात चीजें? सुख शांति प्रेम ज्ञान शक्ति पवित्रता आनंद, ठीक है? तो ये जो है आत्मा के सात शक्तियां हैं, सात गुण हैं, वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होने लगता है। और ये संसार की सबसे बड़ी जरूरत है। जब आप ये शक्तियां स्प्रेड कर रहे हैं तो आप संसार को सबसे बड़ी कोई चीज दे रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी देन है विश्व को, सुना? बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, आपने सुना होगा और मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। कहते हैं द्वापर युग में जब कोई संत महात्मा कोई तपस्वी तपस्या करते थे तो उनके तपस्या बल से क्या होता था? शेर आके बैठ जाता था उनके पास, खाता था उनको, भूल जाता था, बैठ जाता था। वहीं उसके पास बगल में आके हिरन बैठ जाती थी, उसको पता ही नहीं चलता था शेर पास में। वहीं भालू बैठ गया, वहां चीता बैठ गया, यहां मोर बैठ गया, वहां सब लोग आसपास बैठे हैं, कोई किसी से भय नहीं कर रहा होता है। क्यों ऐसा होता है? वो उनको उपदेश देते हैं, भाई भय मत करो, हिंसा करना पाप है, ऐसा बोलते हैं, क्या होता है? हाँ जी, अगर बोलेंगे तो हाथी की भाषा में बोलेंगे कि शेर की भाषा में बोलेंगे? हाँ, कैसे बोल के बताएंगे? जब वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, मन एकदम शांत है, तो आत्मा के ओरिजिनल गुण ओरिजिनल शक्तियां ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो रही हैं। सबको शांति की महसूसता होती है तो सब शांत होके बैठे हैं। सबको सुख भास रहा है तो एक ही पोजीशन में बैठे हैं, हलचल नहीं कर रहे हैं। सबको प्रेम की अनुभूति हो रही है इसलिए आसपास बैठे हैं, लेकिन कोई भय की फीलिंग नहीं है। सब श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनमें चेंज आ रहा है। और कहते हैं ऐसे ऐसे स्थानों पे ही क्यों, लेकिन नॉर्मली लोग मतलब इस प्रकार से मान्यता है कि शेर खाली अपने भूख के लिए ही अटैक करता है, किसी जानवर को मारता है, यूं ही किसी जानवर को शेर नहीं मारता है। अगर शेर भूखा नहीं हो तो खरगोश भी उसके पास बैठ जाए, हिरन भी उसके पास चला जाए तो उसको नहीं मारता है, नहीं खाता है। लोगों की ये मान्यता है और ये बातें जो है प्रमाणित भी हैं। तो सोचो वृत्ति परिवर्तन हो जाती है। तो हमें भी अगर संसार को कुछ देना है तो कुछ हो हाथ में देना है, ऐसी की जरूरत नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तभी बाबा नहीं कहते बच्चे गरीब बच्चों ही मेरे जो है वो सिरताज बनने वाले हैं, मेरे गरीब बच्चों को ज्यादा कुछ मिलने वाला है। क्यों? अगर ज्यादा कुछ देने को नहीं होगा तो शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं ऑटोमेटिकली आती हैं। बुजुर्गों के पास जाते हैं ना तो ब्लेस करते रहते, सुखी रहो, खुश रहो, ये रहो, वो रहो, और देखो लोग उनके पास ही जाते हैं। सिर कहाँ झुकता है? कोई है जो हमें पैसे देने वाले हैं और कोई है जो हमें सिंपल ब्लेसिंग देने वाले हैं। आप ऑटोमेटिकली जाके देखिए आपको सिर कहाँ झुकता है। दुनिया आर्टिफिशियल है तो हो सकता है कि यहाँ पे भी पैसे लेने के लिए भी कहीं सिर झुका दे, जो आजकल दुनिया कर रही है, लेकिन आप देखना जहाँ से ब्लेसिंग मिल रही है, सिंपल ब्लेसिंग, आप वहां जाके ऑटोमेटिकली सिर झुका लेते हैं, ब्लेसिंग्स दे दो, ठीक है? तो अगर दुनिया को झुकाना चाहते हैं, मतलब जो भी हम झुकाना तो नहीं चाहते लेकिन दुनिया को परिवर्तन करना चाहते हैं, दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, तो क्या करना है कि कुछ समय योग में ऐसे बैठना चाहिए जब कोई सोच नहीं है। थॉटलेस स्टेज तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी यही कोशिश करें, कोई विचार नहीं चले, अपने आप से कनेक्ट हो जाए, फिर ऑटोमेटिकली दीप शिखा देखा है वो ऊपर जाता है, जबकि हर कोई चीज जो आप ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आता है, लेकिन अग्नि की शिखा ऊपर जाती है, हर हल्की चीज ऊपर जाती है। तो जब मैं पावरफुल हो जाती हूँ, जब मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी चेतना ऊपर जाती है बाबा के पास, और उस अल्टीमेट पावर हाउस से जाके कनेक्ट होती है और पावरफुल हो जाती है। बस यही योग है, उसे ही बढ़ाना है, उस योग से हम शक्तिशाली होंगे, उस योग से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। ठीक है, तो चलो ऐसे मीठे प्यारे पापा के पास चलते हैं, बहुत प्यार से जो कुछ अभी सुना है उस सुनने के बेस पे अपने मन को असोचता वाली स्थिति पे लेके आए, बाबा के पास जाएं, बाबा से कनेक्ट हो जाएं, अपने आप को एम्पावर करें, पावरफुल बनाएं, और फिर उन शक्तियों को सारे विश्व में स्प्रेड करें। बैठो बाबा की याद। ओम शांति।
Me।